सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज दूसरे दिन भी हरियाणा के इस प्रांतीय संत समागम में कल की तरह भरपूर आनंद प्राप्त हुआ, जहाँ पर आप सभी मिल बैठकर सुंदर भावनाओं को अपने हृदयों में मजबूती दे रहे थे और मजबूती इसलिए मिलती है क्योंकि ऐसे प्रेरणादायक वचन बार बार हमें श्रवण करने को मिलते हैं जो इसी तरफ ही प्रेरित करते हैं कि भाव तो इस मन में उठते हैं लेकिन हमारे भावों को ऐसा सुंदर रूप मिल जाए कि वही भाव हमारा जीवन बन जाए, हमारा व्यवहार बन जाए। इस भाव के साथ आप सभी इन घड़ियों को पूरी तरह से आनंदमय ढंग से बिता रहे हैं, जहाँ पर एक एक वचन जो सत्य भक्ति मानवता के ऊपर आधारित जो प्रेरित कर रहा था कि हम इसी सत्य का आधार लेकर इस जीवन के सफ़र को तय करें, बसा तो हुआ है ये रोम रोम में, लेकिन रोम रोम में बसा हुआ है ये एहसास बना रहे और आवाज़ दी जा रही थी दुनिया को, जैसे कि मीराबाई ने भी गली गली घूमकर जो संदेश दिया, जो पैगाम दिया, जो बुल्ले शाह जी ने दिया या अन्य भक्तों ने जन जन तक ये संदेश और ये पैगाम पहुंचाया कि इंसान इस सत्य को जान ले, इस मालिक खालिक की पहचान कर ले, अपने असली वजूद, अपने असली अस्तित्व को तू जान ले और उसी में ही स्थित होकर फिर इस जीवन के सफ़र को तय कर ले। ये संदेश युगों युगों से दिया गया है कि हे मानव, ये जीवन का मूल्य उस कार्य के करने के कारण है, जो कार्य करना अपने आप में दोनों जहानों की बाजी जीतने समान है। वो कार्य है इस सच्ची दौलत की प्राप्ति करनी, इस धन की प्राप्ति करनी जो जलता नहीं, जिसे वायु सुखाती नहीं, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं, जो उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं। ये ऐसी सच्ची दौलत जो केवल दुनियावी दौलतों की तरह इस दुनिया में रहते हुए भी साथ छोड़ जाती है, तो ऐसी दौलत प्राप्त करने के लिए तुझे मालिक ने ये अवसर दिया है, तो ये अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा ले और जागरूक हो जा और ग्राहक बन जा इस सच्ची दौलत का, ऐसे सरमाए का तू ग्राहक बन जा। क्योंकि दुनिया को देखा संतों महात्माओं ने कि ये और तो हर चीज़ के ग्राहक होते हैं लेकिन सत्य के ग्राहक नहीं होते हैं। इसीलिए कबीर जी ने भी यही कहा कि साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जय जी, कि ये सच के ग्राहक नहीं हैं, ये झूठ के ऊपर फिदा हैं। झूठ किसको कहा गया है? इस संसार को कहा गया है कि ये संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी, कि ये संसार तो का रूप तो ऐसा ही है, तो इसके ही ग्राहक अक्सर लोग रहते हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण का जिक्र आता है और गीता का जिक्र आता है और उन्होंने भी जो भक्ति के अलग अलग रूप बताए और कहा कि नाना प्रकार के भाव से युक्त होकर मेरा नाम लिया जाता है, मेरी भक्ति की जाती है, कुछ और क्रियाएं की जाती हैं, कुछ यात्राएं की जाती हैं, नाना प्रकार की विधियों को अपनाया जाता है। और उन्होंने जो चार प्रकार के भक्त बताए, उनमें से पहले दो प्रकार के भक्त को के बारे में यही बताया कि या तो ये कोई भय के कारण मेरी भक्ति और उपासना बंदगी कर रहा है, कोई दुनियावी उपलब्धियां और प्राप्तियों का भाव मन में लिए हुए मेरी बंदगी कर रहा है, और फिर तीसरे प्रकार का कि जो जिज्ञासु है, जो जिज्ञासा मन में रखता है सत्य की पहचान करने के लिए, अपने आप का वजूद की पहचान करने के लिए, इस मंजिल को पाने के लिए एक जिज्ञासा रखता है, और उससे आगे का वो जो सबसे श्रेष्ठ माना भगवान कृष्ण ने कि ज्ञानी भक्त जो मुझे सब में और सब को मुझ में देखते हैं। तो इस प्रकार से वो सबसे आखिरी वो अवस्था बताई। पहले प्रकार के भक्त तो वही हैं जो अर्थार्थी भक्त हैं, जो अर्थ के कारण, दुनियावी उपलब्धियों के कारण मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो उसी से ही हम देखें कि कबीर जी को भी इसीलिए कहना पड़ा कि साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगत पति जय जी, कि ये सत्य के ग्राहक नहीं हैं, ये झूठ के का की प्राप्ति के लिए जो मिथ्या है, जो क्षण भंगुर है, जो शाश्वत नहीं है, जो सदैव रहने वाला नहीं है, उसके तरफ ज़्यादा ये रुझान है। तो इसीलिए महापुरुष संत जनों का इतना उपकार संसार के ऊपर रहा है, और वो उपकार कोई सरल उपकार नहीं, कठिन उपकार, कि कठिनाई कदम कदम के ऊपर, क्योंकि इस सत्य की तरफ जोड़ना, इस सत्य की तरफ मुख का मोड़ना, ये इतना सरल काम नहीं है, क्योंकि ढलान की तरफ तो सहज में ही पानी भागता है, उतराई की तरफ भागता चला जाता है, लेकिन जल को ऊंची जगह पर ले जाना हो तो कितनी कठिनाई। कहीं छत के ऊपर टंकी है तो अगर मोटर नहीं है, पंप नहीं है, तो बाल्टियां भर भर कर ऊपर ले जाएंगे, और अगर मोटर उपलब्ध हो गई, पहले उसके ऊपर खर्चा, फिर बिजली भी हो, कहीं पावर ही गुल हो जाए तब भी ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से नीचे स्थान से ऊपर की तरफ ले जाना जल का, वो कितना कठिन काम है, लेकिन ढलान की तरफ तो कोई जतन नहीं करना पड़ता, भागते चला जाता है। तो ये दुनियावी भी हमारी प्रवृत्तियाँ या फितरतें वो वैसी ही हैं जैसे ढलान की तरफ जाती हैं, उतराई की तरफ जाती हैं, गिरावट की तरफ जाती हैं, दुनियादारी की तरफ जाती हैं, और दुनियावी प्रवृत्तियाँ, सांसारिक प्रवृत्तियाँ हमारी आए दिन और प्रबल होती चली जाती हैं, और ज़्यादा उनको मजबूती मिलती चली जाती है। तो इसलिए जहाँ पर ऐसी फितरत हो उसको रूप दे देना, उसका रूपांतरण कर देना, और उसको ऊंचे पद की तरफ ले जाना, ये वाकई ही सरल कार्य नहीं है। लेकिन संतों, महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों ने यही संसार के ऊपर योगदान दिए ताकि इंसान इस ऊंचाई की तरफ बढ़े, ये ऊंचे पद को प्राप्त करें, ये दोनों जहानों की बाजी जीते, ये अंधकार से छुटकारा पाए, और अंधकार के कारण जो भ्रम और भ्रांतियां हैं उनसे निजात पाए, और सही मायनों में ये अपने जीवन को एक सुंदर रूप दे दे। ये भाव लिए हुए महापुरुष संत जनों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने ये संदेश दिए, और चेतावनियां भी कदम कदम पर दी कि हे इंसान, ये समय बहुत अमोलक है, ये समा तो चलता रहेगा लेकिन तू नहीं रहेगा, ये संसार में तेरा आना अगर है तो तेरा जाना भी निश्चित है, और तेरा जन्म हुआ और फिर इस संसार से रुखसत भी होना है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कि यहाँ पर जो आता है वो जाता भी है। ये वजूद तेरा जिस्मानी हमेशा रहना नहीं है, ये श्वासों की लड़ी ये हमेशा चलती नहीं रहनी है, ये कहीं ना कहीं अचानक ही इसमें ठहरावा जाएगा और फिर तेरा कुछ सिलसिला जो है ऐसा बनेगा कि तू इस सत्य से वंचित अगर रहा उन श्वासों के रुकने तक, तो फिर ये पूर्ति होने वाली नहीं है। तो इसीलिए तू अभी जाग जा, अभी तो इस गफलत की नींद से उठ जा। लोए लय लोए भर लय कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम हुई बिन शाम मोहम्मत ते कर जांदी ने डरना, कि अभी समय है, अभी तू ये लाभ उठा सकता है, अभी तू ये बर्तन भर सकती है। आत्मा को बोला गया कि लोए लोए भर लय कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम हुई बिन शाम मोहम्मत ते कर जांदी ने डरना, कि अगर इस सवेरे में तूने ये बर्तन नहीं भरा तो फिर रात्रि आ जानी है, जैसे कहते हैं कि चार दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, कि शाम हो गई जब जीवन की तो फिर तू क्या करेगी। इस आत्मा को कहा गया, अजे एडा तेरा काम कुड़े कि कर लेना उस दम कुड़े, जद कर आए मेहमान कुड़े। ये आत्मा को कहा जा रहा है कि जब मेहमान आ गए, जम आ गए। आज सुबह भी सेवादल की रैली में कुछ दृश्य पेश किया गया जहाँ पर कुछ जमदूतों का जिक्र हो रहा था, तो यहाँ पर भी आत्मा को यही कहा जा रहा है कि अजय एडा तेरा काम कुड़े, कि अभी तो बहुत काम पड़ा है, सबसे लाजिम सबसे ज़रूरी काम, सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण काम वो अभी भी पेंडिंग है, वो अभी भी पड़ा हुआ है, वो भी हासिल नहीं हुआ है। दुनिया के काम कर लिए और सोचा कि मैंने कर लिए, मैदान मार लिए, उपलब्धियां हो गई, तो ये काम मैंने कर लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो काम तो कर लिए लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो तो अभी किया नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अजय एडा तेरा काम कुड़े, एडा कहते हैं बहुत, अभी तो पहाड़ जितना काम पड़ा हुआ है बाकी। अजय एडा तेरा काम कुड़े कि कर लेना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े, कि जब ये दूत आ गए फिर तेरी एक चलने वाली नहीं है, फिर कुछ बनने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि अभी बर्तन भर ले, अभी ये नाता जोड़ ले, अभी सच की लगता कर ले। तो इसलिए संतों महात्माओं ने ये एक चेतावनियाँ भी दी हैं, ये संदेश भी दिए हैं, ये पैगाम भी दिए हैं कि हे आत्मा, तो अपने मूल परमात्मा से जुड़ जा, अपनी सच्ची पहचान जान ले। ये जिस्म तेरी पहचान नहीं है, ये तेरा हिंदू सिख मुस्लिम में होना ये तेरी पहचान नहीं है, ये तेरा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन होना ये तेरी पहचान नहीं है, ये तेरा काला और गोरा होना, ये पंजाबी सिंधी गुजराती मराठी होना ये तेरी असल पहचान नहीं है। तेरा वजूद आत्मा है जो परमात्मा की अंश, और परमात्मा मराठी पंजाबी नहीं हुआ करता है, परमात्मा सिंधी गुजराती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन नहीं हुआ करता है, परमात्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हुआ करता है। और अगर परमात्मा की इनमें से कोई भी पहचान नहीं है तो तू आत्मा इसी की अंश, तेरी कहाँ पर ये सच्ची पहचान है। यानी कि ये दुनियावी जिस्मानी पहचानें, ये संस्कृतियों वाली पहचानें, ये तेरी असल पहचान नहीं है। तेरी असल पहचान निर्मल इस परम सत्ता की अंश आत्मा, तो अगर तू ये पहचान अपनी बना लेती है फिर तेरे भाव भी आत्म भाव बन जाएंगे। आत्म भाव, वो आत्म भाव बन जाना, जैसे कल कहा कि आत्मा पगड़ी वाले में भी है, टोपी वाले में भी है, हैट वाले में भी है, कैप वाले में भी है, मुंड मुड़ाया है उसमें भी है, छोटा सा बच्चा है उसमें भी है, बुजुर्ग हो गया है उसमें भी है। तो इस प्रकार से ये फिर आत्मभाव पैदा हो जाता है, और आत्मभाव का मतलब ही यही है, फिर अपनत्व का भाव मजबूत हो जाता है, अपनत्व का हो जाता है, एकत्व का हो जाता है। जो वननेस का नारा दिया गया कि वननेस एकत्व और अपनत्व अपनेपन का भाव, के सारे अपने हैं, कोई पराया बेगाना नहीं, मैं मालिक का बंदा, ये मालिक का बंदा, तो एक ही परिवार का हम अंग हैं। तो इस अपने असली वजूद को जानने के कारण ही ये सारी जाति पाति भाषाएं और मजहबों वाली दीवारें ढह ढेरी हो गई। ये एक सहज में ही हो गया, इनका गिरना सहज में ही हो गया, कोई जतन नहीं करने पड़े। जैसे दीपक जलाओ तो अंधेरा मिटा, सहज में ही मिट गया। इधर माचिस जलाई, इधर दीपक जलाया, सदियों का अंधकार क्षण में चला गया। ये नहीं कि अभी दीपक जलाया है, इसके बाद कोशिश करनी पड़ रही है अंधकार को बाहर फेंकने के लिए। इधर उजाला हुआ, उधर अंधकार मिट गया, वो अंधकार चला गया। इसी तरह से जैसे वो एक फल और फूल की मिसाल आती है, एक अंग्रेजी की पंक्ति दास अक्सर दोहराता है कि when a fruit grows from the flower, the petals of the flower fall by themselves, कि एक फूल में से जब फल निकलता है तो फल की पंखड़ियाँ अपने आप गिर जाती हैं। वो फूल में से फल का उगना, वो प्रोसेस अपने आप में ही उस फूल की पंखड़ियों को गिरा रहा है। ये नहीं कि फल निकल रहा है, उसके बाद फल को कोशिश करनी पड़ रही है कि ये फूल की पंखड़ियाँ नीचे चली जाएं। वो प्रोसेस अपने आप में ही वो फूल की पंखड़ियों को गिरा रहा है, उसमें से फल निकल रहा है। दीपक जलाया तो अंधकार मिट जाता है। इसी तरह से अपने असली वजूद में जब स्थित हो गए तो ये दीवारें अपने आप ढह ढेरी हो गई। कल तक तो ये मजहबों ने हमें कैसा उलझाया हुआ था, किस तरह से हम मजहबों के नारे बुलंद करके हम मासूमों की जानें ले रहे थे। हमारी नज़र देखती थी तो परायपन की भावना से देखती थी, नीचा करके देखती थी, और इसी तरह से हमने सारा वातावरण विषैला बनाया हुआ था। लेकिन जैसे कल दास ने कहा कि वो समझ अगर आ गई तो बुल्ले शाह जी के वचन के गल समझ लई, फिर रौला की राम रहीम ते मौला की, कि फिर वास्तविकता में जो मजबून मिल्लत की दीवारें जो खड़ी की गई थी, हम उससे बाहर आ गए, वो गिर गई, अब ढह ढेरी हो गई। अब मेरी मान्यता वो कुछ और हो गई है, मेरी बिलीफ अब कुछ और हो गई है। वो पहले वाली बिलीफ मजो मिल्लत वाली वो संकीर्ण बिलीफ थी, और अब मेरी व्यापक बिलीफ हो गई है। तो इस तरह से ये आत्म भाव, ये आत्मा अपने आप की पहचान इस रूप में बनाए जो असल में है, तो फिर ये सारे बखेड़े दूर हो जाते हैं। ये फिर अपनी जाति को ऊंचा मान और दूसरे की नीचा मानकर उसको हम दुत्कारेंगे नहीं, उसको अछूत नहीं कहेंगे, उसके हाथ का छुआ हुआ गिलास का पानी हम नाली में नहीं फेंकेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ी क्रांति हमारे जीवन में आ जाएगी। जैसे दास ने पहले कहा कि सारे पैमाने हमारे दुनियावी हैं, और क्रांतियाँ भी ज़्यादा हमारे मनों पे वही प्रभावी होती हैं कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये रेनेसांस, ये फलां, ये वाइट रेवोल्यूशन, डेयरी रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशंस और क्रांतियाँ वो तो हमारे दिमागों के ऊपर बहुत ही असर करती हैं। तो जो सबसे बड़ी रेवोल्यूशन, सबसे बड़ी क्रांति जीवन में घट जानी, कि ऐसी जागृति आ जानी कि संकीर्णता से विशालता में स्थापित हो जाना, दुनिया और दुनियादारी को सब कुछ मानते हुए जो कांच को हीरा मानकर चलते आ रहे थे, जान लिया प्राप्त हो गया वो असल में हीरा, जिसकी कांच की बनिस्बत कहीं अधिक कीमत है। ये क्रांति जीवन में घट जानी, जो आज तक दूसरे को नीची दृष्टि से देखा जाता था, आज सबको एक ऊंचे तल पर देखा जा रहा है। इस प्रकार की ये क्रांति जीवन में घट जाए हर मुल्क में रहने वाले हर इंसान के जीवन में, तो वाकई ये धरती जन्नत बन जाए, ये स्वर्ग बन जाए। ये बाकी क्रांतियाँ घटित हुई तो क्या स्वर्ग बन गई दुनिया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, क्या ये धरती जन्नत बन गई? उसी इंडस्ट्री ने बॉम्ब्स भी पैदा किए हैं। इंडस्ट्री पूरी की पूरी एक आर्मामेंट्स की है, आर्मामेंट्स की है। आर्म्स बनते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं, न्यूक्लियर डिवाइसेस बनती हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो क्या जन्नत बन गई ये धरती, स्वर्ग बन गई? डेयरी रेवोल्यूशन हुई, दूध की नदियां बहीं, क्या दूध इतना ज़्यादा हासिल हो गया तो ये स्वर्ग बन गए क्या हमारे घर, या जन्नत बन गई ये धरती? तो ये दुनियावी रेवोल्यूशंस, ये केवल कहीं ना कहीं सहूलत हमें मिल जाए दुनिया में, उसके लिए बस उतनी सी उनकी कीमत है। और सबसे ज़रूरी और लाजिम और सबसे महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन अगर हर इंसान के जीवन में घटित हो जाए, तो वाकई ही फिर हर किसी के योगदान हो जाएंगे धरती को जन्नत बनाने के लिए। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन ये संदेश और ये पैगाम ये दिए चले जा रहे हैं, ये एक सुचेत करते चले जा रहे हैं, ताकि इंसान हर कोई अपना भी और औरों का भी ये भला, ये करने वाला बन जाए। तो इस प्रकार से ये दुनिया जिसमें तपश ही तपश है, हर तरफ जिसकी राहों में कड़कती धूप है, कि हर तरफ इस ज़िंदगी में कड़कती धूप है, और बस तेरी याद की साये हैं पनाहों की तरह, कि वाकई ये तो जिस दुनिया में, इस जीवन में ये तो कड़कती धूप है, वही बात कि ये दुनिया और दुनियादारी ही तो कड़कती धूप है, बस तेरी याद के साये ही हैं पनाहों की तरह, कि तेरी याद हे मालिक हे खालिक, तेरा एहसास तेरे रंग में रंग जाना, यही है साये जो तेरी पनाह में मिलते हैं। इस प्रकार से ये संतों महात्माओं ने, ये गुरु पीर पैगंबरों ने ये एक संदेश और ये पैगाम दिए हैं, तो आज भी वही संदेश दिया जा रहा है, कोई और उलझाया नहीं जा रहा है। जैसे दास ने पहले कहा कि गल समझ ली कि फिर रौला की, राम रहीम ते मौला की, कि यहाँ तो धर्म के आधार के ऊपर भी हमें, हमारे मनों में संकीर्णता और जहर ही भरी जाती है। कोई प्यार नहीं सिखाया जा रहा, कोई मिलवर्तन नहीं, कोई मिलजुल कर रहें, कोई बर्दाश्त करें एक दूसरे को नहीं सिखाया जाता, या हमें केवल क्रियाएं दी जाती हैं, या रिचुअल्स में उलझाया जाता है, या फिर हमारे मनों में जहर घोली जाती है, हमें असहनशील बनाया जाता है। टॉलरेंस लेवल धर्म ने हमारा बढ़ाना तो क्या था, टॉलरेंस लेवल बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, ज़रा बर्दाश्त नहीं करना, ये दूसरे धर्म से है, तो क्या फिर ये धर्म धर्म कहलाने लायक हैं? तो इस प्रकार से ये एक जहर एक मनों में घुला जाता है, इस तरह से हमें हमारे हाथ में ही अपनी ही पतन के सामान हमारे हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं, हमारे ही हाथ में, और हमें महसूस ही नहीं होता कि हम क्या पकड़ रहे हैं, हम क्या सामान इकट्ठा कर रहे हैं। हम अपने ही हाथ में उसको थामे हुए हैं, पकड़ाने वाले पकड़ा रहे हैं और थामे हुए हम अपने ही नैया को डुबोने का सामान बड़े चाव के साथ एकत्रित कर रहे हैं। ज़रा सोचते नहीं कि एक पल सोचें, क्या वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने यही धर्म स्थापित किए थे? क्या उनका यही अभिप्राय था कि नफरत करो, जुल्म करो, दूसरे को नीची दृष्टि से देखो? वो गुरु पीर पैगंबरों को तो भूल ही जाते हैं, उनकी शिक्षाओं की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और असर ले लेते हैं उनका, जो खुद अज्ञानता में या खुद गर्जियों में लिप्त हैं, अपने उस गरज को पूरा करने के लिए मासूमियत का पूरा पूरा लाभ उठाकर लड़वाते हैं और धरती को नरक बनाने के लिए हमें ही आगे लगाते हैं। लेकिन इंसान ऐसी ना समझी फिर करता चला जाता है, फिर ये सच्चे धर्म की पहचान ना करके फिर उसी डगर पर चलता चला जाता है। तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है जो प्यार का जहान बसाते हैं, वो हैं जो वाकई ही इस सच्चे सत्य को जान लेते हैं, जो जान जाते हैं कि इंसानियत ही सच्चा धर्म है और इंसानियत में दया होती है, करुणा होती है, एक दूसरे का शोषण नहीं होता, एक दूसरे का पोषण होता है। इस प्रकार से ये सच्चे धार्मिक बन जाते हैं, इस सत्य से नाता जोड़कर अपनी असल पहचान जानकर वही पहचान बना लेते हैं और फिर सच्चे धार्मिक बनकर इंसानियत के धर्म को अपनाकर ये इस दुनिया में ठंडक स्थापित करते चले जाते हैं। और यही एक भाव ये हर मन में भरने के प्रयास ये भक्त और संत ये परोपकारी करते चले जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों में भी यही संस्कार भरे जा रहे हैं। इस मिशन में आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी आपने श्रवण किया और किस तरह से बाल संगते भी होती हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को भी यही एक संस्कार दिए जाते हैं। और वाकई ही जो बड़े हैं उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि ये कोमल सी उम्र को वही कुछ हम दें जिसका अनुकरण करके इनका म्यार ऊंचा हो। ये बड़ों के ऊपर कितनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक वो मिसाल वो दास ने चंद दफ़ा दी कि एक दंपति ने, पति पत्नी ने डिनर के ऊपर, सफर के ऊपर इनवाइट किया अपने नेबर्स को, तो वो नेबर्स आ गए, घर में आ गए निमंत्रण के अनुसार के भोजन के लिए बुलाया था। अब बैठे हुए हैं उनके ड्राइंग रूम में वो फैमिलीज़, वो परिवार जिनको निमंत्रण दिया गया था, वो वहाँ पर बैठे हैं, हंसी मजाक चल रही है, उनके बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं और शोर शराबा भी हो रहा है। कुछ उनके हाथ में पकवान स्टार्टर्स दिए हैं वो खा रहे हैं, कुछ गंदगी फैल रही है, कुछ बच्चे सामान तोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो सारा ही वातावरण कुछ और बना हुआ है। तो जब डिनर सर्व करने के लिए डाइनिंग टेबल के ऊपर सबको बिठाया गया तो माँ अपनी बेटी को कहती है कि चाइल्ड, यू से द प्रेयर टू द लॉर्ड, तुम प्रार्थना करो परमात्मा से। वो कहने लगी, मैं तो बड़ी घबराहट है मुझे, हाउ कैन आई से द प्रेयर, मुझे तो नहीं याद। तो माँ कहती है कि नथिंग टू वरी, यू जस्ट रिमेंबर व्हाट योर मॉम सेज, द प्रेयर मॉम सेज, यू रिमेंबर दैट एंड जस्ट रिपीट इट, कि जो यानी कि मैं तुम्हारी माँ जो प्रेयर बोलती हूँ गॉड को, तो तुमने बस वही पंक्तियाँ दोहरानी हैं। तो बेटी कहती है, अच्छा बस यही कहना है? हाँ बस यही, गॉड को थैंक करना है, गॉड को संबोधित करके परमात्मा को। तो जब डाइनिंग टेबल पे सारे बैठे और प्रेयर का वक्त आया, तो बच्ची एकदम से बोलने लगी, आई एम गोइंग टू से प्रेयर व्हाट माई मॉम सेज। तो कहने लगी, ओ गॉड, why on earth I invited all these people in my house for dinner? यानी कि वो बच्ची प्रेयर ये कर रही है, प्रार्थना, कि हे परमात्मा, मैंने काहे को इन सब को अपने घर में बुलाया है, शोर और गंदगी ही डाल रहे हैं। ये माँ ने बच्ची के सामने रसोई में कहा था, और क्योंकि उसमें गॉड शब्द सुन लिया बच्ची ने, तो बच्ची ने वही पंक्ति दोहरा दी जो माँ ने कही थी, कि मैंने क्यों इन सब को यहाँ पर बुलाया। यानी कि वो छोटे से बच्चे कोमल से, उनको यही दिया गया, वही सुनने को उसको मिला, बच्ची को उसने वही दोहरा दिया। तो कहने का भाव यही है कि बड़ों को, समाज को, इसी प्रकार से ये कोमल सी उम्र वालों को, वरना तो शायर का वो शेर आपने कई कई दफ़ा सुना है कि देखकर बड़ों की दुनिया, एक छोटा सा बच्चा बड़ा होने से डरता है, कि एक बड़ों की दुनिया देखकर वो छोटा सा बच्चा, जिसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई उसके मन में कोई ख्याल नहीं है, अभी थोड़ी देर एक दूसरे से लड़े भी हैं, थोड़ी बहस भी हुई है, थोड़ी देर के बाद फिर मिलके खेल रहे हैं, और बड़ों की दुनिया देखता है, देखता है कि किस तरह से ये इतनी गांठ बांध लेते हैं, कि ये पुश्तों दर पुश्तें अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ते हैं। और वो कोमल सी उम्र अगर कहीं पर मन मुटाव रूठ भी गए, लेकिन फिर किस तरह से किसी ना किसी बहाने मिल जाते हैं, फिर उसी तरह से हंसना खेलना, फिर उसी तरह से वो क्लास में एक दूसरे के साथ सीट जो है वो शेयर करनी, एक दूसरे के ज्योमेट्री बॉक्स शेयर करने, फिर उसी तरह से सिलसिला वो शुरू हो जाता है, गांठ नहीं बांध लेते हैं। और जैसे दास ने कहा कि ऐसी कोमल उम्र वालों के मनों में भी क्या भरा जाता है, तफरके पैदा किए जाते हैं, दूरियां पैदा की जाती हैं, घृणा पैदा की जाती है। पीछे भी दास ने ये जो यात्रा इसी में किसी एक स्टेशन के ऊपर, एक स्थान के ऊपर दास ने वो जिक्र किया कि किस तरह से ये जहर भरी जाती है, कि एक माँ बाप स्टूडेंट के, उन्होंने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि हम देखना चाहते हैं हमारे बच्चा जिस क्लास में बैठता है, हमें बस शौक है देखने का कि वो क्लास में कहाँ पर बैठता है और कैसा वो क्लासरूम का वातावरण है, हम देखना चाहते हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जस्ट डोर स्टेप से वहाँ से देखेंगे और लौट आएंगे। तो वो माता पिता गए, प्रिंसिपल ने अलाउ कर दिया, और वो द्वार पर खड़े देख रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स कुछ लिख रहे हैं, गर्दने नीचे हैं, कुछ नोट कर रहे हैं, और वो देखकर वो वापस लौट गए। जब छुट्टी हुई शाम के वक्त, बच्चा स्टूडेंट घर लौटा और पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें पता है हम तुम्हारे स्कूल आए थे आज? कहते, आए थे आप? कहते, हाँ आए भी थे, और बिल्कुल क्लासरूम के तुम्हारे डोर पर खड़े, दरवाजे पे खड़े हमने देखा, सभी आप लिख रहे थे कॉपी पे, तुम्हारी भी गर्दन नीचे थी, आप लिख रहे थे तो आपने हमें देखा नहीं। तो बेटा कहने लगा, कैसा लगा आपको क्लासरूम? तो पिताजी कहने लगे, क्लासरूम तो अच्छी थी, लेकिन एक बात मेरी सुन ले, तू कल जाकर प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करना कि तेरी सीट बदल दें। वो कहने लगा, मैं क्यों सीट बदलने के लिए कहूँ? मेरे साथ जो बैठता इतना मेरा घना मित्र है, दोस्त है। तो पिता कहने लगा, तू जानता नहीं वो नीची जाति वाला है, वो नीची जाति वाला है, खबरदार उसके साथ तो बैठा, तो अपनी सीट चेंज करवा ले। अब यही सोचें कि उस बच्चे के लिए क्या जाति पाति के सवाल हैं, उसका ध्यान ही नहीं जाता कि जाति पाति क्या बला होती है, और ये बड़े हैं जो जहर घोल रहे हैं। तो इस तरह से कहने का भाव यही है कि वाकई जो कल्याण चाहता है, जो चाहता है कि दुनिया सवरे, तो वो अवश्य इस प्रकार से अपने भाव बनाए, ऐसी जागृति जीवन में लाए, ऐसा नज़रिया अपना बनाए, ऐसा व्यवहार अपना सुंदर रूप दे उसको, ताकि वाकई ही ये धरती ये स्वर्ग बन जाए और चारों तरफ अमन शांति हो। और इस प्रकार से यही एक अरदास और प्रार्थना ये की जा रही है कि दातार प्रभु कृपा करे, सबको ये सुमति दे, ये जागृति दे, सभी एहसास करें और इस प्रकार से ये अपने इस जीवन के सफ़र को तय करें। इनको ये बात समझ में आ जाए कि जो हमें लड़ाते हैं, जो हमारे मनों को संकीर्ण बनाते चले जा रहे हैं, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये तो वैसी अवस्था है जैसे वो पंजाबी की पंक्ति भी दास ने चंद दफ़ा दोहराई कि एक इंसान बैठा हुआ, वो दरी के ऊपर बैठा हुआ, और सर्दी के दिन और उसके अपने ऊपर उसने लोई की हुई, वो शॉल सी की हुई, तो एक आया, वो उसकी दरी खींच रहा है और उसकी लोई उतार रहा है। तो ये पंजाबी में कह रहा है कि ओ की करी जाना है, ओ की करी जाना है, खिंची दरी जाना है, लाई लोई जाना है, कि ये दरी भी खींची जा रहा है, ऊपर से लोई भी उतारी जा रहा है, ये क्या करी जा रहा है। तो वहाँ तो उसको पता था कि मेरी दरी खींची जा रही है, लोई उतारी जा रही है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चलता इतने सटल वे में, जैसे वो शकुनी कोई सीधे सीधे नहीं कहता था, वो बड़े टैक्टफुली, बड़े ढंग से ऐसी बात करता था कि दूसरे के मन में जहर आ जाता था। तो यही सिलसिला, इसीलिए कहते हैं कि चेतन रहना है, कि चेतन रहकर हमने चलना है, कि ये जो कह रहा है ये कोई हमारा नुकसान तो नहीं कर रहा है, या फिर ये जो शिक्षाएं हैं गुरु पीर पैगंबरों की, ये उसी अनुसार हैं कि नहीं है। तो इस ये चेतनता भी बड़ी ज़रूरी है। तो अब साध संगत दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, और ये हरियाणा का संत समागम 2 दिवसीय ये संपन्नता की ओर है, जो कल और आज एक आनंदमय वातावरण बना जहाँ पर आप सभी पहुँचे। हालांकि कल ही से, 1 मार्च से ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स और अनेकों स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम शुरू हो गए, इसलिए यहाँ पर अनेकों नहीं पहुँच पाए इस समागम में, लेकिन फिर भी आप सभी यहाँ पर पहुँचे और एक सुंदर वातावरण यहाँ पर स्थापित हुआ, और इसी प्रकार से एक ऐसा सुंदर वातावरण जो है इसको फैलाव देते चले जाएं, चारों तरफ प्रेम के तराने हो, चारों तरफ मानवता इंसानियत हो, और इसी प्रकार से एक भाईचारे की भावना से युक्त होकर सभी इस संसार की यात्रा को तय करते चले जाएं। तो यही एक संदेश, यही मंतव्य, यही मकसद ऐसे समागमों का जो यहाँ हरियाणा का रेवाड़ी में आयोजित हुआ। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन्यवाद।